ओम शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बताया, और वैसे भी बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, सबसे जास्ती बाबा को कौन याद करते हैं। बाबा कहते हैं जो बंधेलियां हैं वो बाबा को बहुत प्यार से याद करती हैं, और बाबा भी उनका रिस्पांस देते हैं। तो आज ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को महावीर बनना है, और महावीर बच्चों की निशानी क्या होगी वो बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, पवित्रता है, कितने भी विघ्न आए लेकिन वो अपनी मर्यादा को कभी भी तोड़ेंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बहुत याद करना है, और सबसे ज्यादा याद कौन करती हैं? बांधेलियां याद करती हैं। बाबा उनकी याद का रिस्पांस भी करते हैं। बहुत सारे पत्र बाबा के पास आते हैं। बाबा खास विशेष सबके जवाब तो देती हैं, लेकिन बांधेलियों को जब पत्र मिलता है तो कितना प्यार से खुशी में झूमती हैं। और फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना चाहिए और मटेरियल तैयार रहना चाहिए। जैसे दुनिया में भी क्या होता है, कोई लौकिक में भी बड़ा व्यक्ति आता है, उसको कोई ना कोई प्रकार की सौगात देती है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास भी ज्ञान की ऐसी ऐसी चीजें तैयार हो जो कोई भी आए वो उनको सौगात दे। और साथ साथ बाबा ने अपनी नई दुनिया भी याद कराई। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। मीठे बच्चे श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज का प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सा चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? सिर्फ कौन सा चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उन्हें परवाह नहीं करनी। कई प्रकार के विघ्न आते ना, तो बाबा कहते अपनी मर्यादा पर पक्के रहो। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं कि अंदर से कुछ है और ऊपर से कुछ और बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ क्या वह भी खुद करता हूँ? कौन कौन सी बात है फिर रिपीट करती हूँ। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है, सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूँ। दूसरा, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ। तीसरा, बेहद का वैराग्य रहता है। चौथा, मैं आप समान बनाता हूँ, मेरे लिए क्रोध तो नहीं। जो दूसरों को कहता हूँ वह खुद भी चेक करता हूँ। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता, गीत में सुना और उस खुशी में रहना है। इसमें बोलने का नहीं रहता है, ये तो समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं, हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को समझ आई है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन ना सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य, फिर बाद में रावण राज्य, फिर दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाया भी ऐसे है, पहले राम राज्य अद्वैत राज्य है, फिर रावण राज्य। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वॉइसलेस बना रहे हैं। ऊंच से ऊंच भगवान को तो सब कहेंगे ना, उनको ही बाप कहा जाता है, तो वह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत तो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अब विकारी नरक बन गया है। हम फिर से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है, और बाप जो बताते हैं उसको नोट कर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करना चाहिए। ऐसे क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। बाबा कहते हैं ऐसे क्या क्या लिखें जो उनकी बुद्धि में क्लियर समझ आ जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे कि भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था ही नहीं, बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। बाबा कहते दोनों बात, एक ईश्वर को नहीं ठगना है, दूसरा अपने आप को भी नहीं ठगना है। क्योंकि अपने आप को जब मियाँ मिठुक बना देते हैं ना, तो इसका मतलब कि अपने आप को ठगते हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं है। ऐसी नहीं कि ईश्वर हमको देखते चल रही है। दुनिया में तो समझते ना, कुछ भी करो भगवान क्या देखता है। जो बुद्धिमान है समझदार है वो समझ जाते हैं कि भगवान जो है जो करता है, जो मनुष्य देख करता है उसका फल तो उसको मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूँ। ऐसी नहीं कि ईश्वर हमको देखते देखते ही छोड़ी है, तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। कौन सा? कि भगवान हमको देखते थोड़ी है। बाबा कहते बाबा देखे या ना देखे, लेकिन जो कर्म करेंगे उसका फल तो मिलता है ना। तुम्हारे मुख से अक्षर निकल ना सके, तुम जानते हो कि पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वॉइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवते संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी तब तो सारे भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी नरक है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी भी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बाबा को रहता था हमेशा सीढ़ी का चित्र या लक्ष्मी नारायण का चित्र या झाड़ का चित्र, जो जैसे समझने वाला हो उसको वैसा दे भी सकते हो। तो बाबा कहते हैं कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम जो भी आते हो सौगात भी दे सकते हो। बड़े बड़े आदमियों को तो बड़ी सौगात मिलती है ना, तो जो भी आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। बाबा मिशन कहते थे कोई भी चीज है उसको पहले से तैयार रखो। कोई आता है तो उसको दो, ऐसा नहीं कि कभी इधर ढूंढो कभी इधर ढूंढो, है ही नहीं, क्या करेंगे, बाद में देंगे। तो बाबा कहती हैं चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। ये चित्र भी तैयार हो, साथ साथ नॉलेज भी। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है, हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना, जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए। अब बाबा बताते हैं जो अच्छी तरह से समझेंगे, जो पहले आए उन्होंने ही 84 जन्म लिए। बाप 84 जन्म बनाकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा पहले 84 जन्मों की कहानी सुनाते, फिर बाबा कहते हैं इनके 84 जन्मों की बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा, इन द्वारा ही ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाओ। इतने ब्राह्मणों को रचना कोई सहज है क्या, इनके मुख कमल से ही तो रचते हैं, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं। ब्रह्मा का बाप का कभी नाम सुना, उसका नाम ही नहीं है तो है कौन शिव बाबा। जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली करते। बाबा ने प्रवेश किया, एडॉप्ट किया, नाम बदली किया। सन्यास भी कराया जाता है दुनिया में भी। सन्यासी जब सन्यासी बनते हैं, सन्यास करते तो उनके भी नाम बदली हो जाते हैं। तो बाबा कहते बाबा ने इनका नाम रखा ब्रह्मा। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, क्योंकि वो सन्यास करते हैं उनको थोड़ी पता है, याद ही रहता है कि हम पहले क्या थे, क्यों सन्यास किया, को सब बातें जल्दी नहीं भूलती हैं। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, जरूर याद रहता है, तुमको भी याद रहेगी, परंतु उनको उनके लिए तुमको वैराग्य है क्योंकि तुम जानते हो। तुम बाबा कहते आपको भी याद रहता है, उनको भी याद रहता है, और ये दुनिया की सब बातें याद है, लेकिन तुमको वैराग्य क्यों, क्योंकि तुम जानते हो दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है। तो बाबा कहते हैं परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है। कौन सी बात के लिए, कि हम बाबा के बने पुरानी बातों को भी जानते हैं, पुरानी दुनिया को भी जानते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या है, वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। बाबा कहते अभी देखो याद भल आती होगी लेकिन उसको भूलना है क्योंकि ये सब कुछ कब्री दाखिल होना है। ज्ञान में सब कुछ समझाना है अच्छी रीति, वह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते, घर बार ऐसे नहीं छोड़ते समझ के छोड़ते ना, वह भी ज्ञान से घर बार छोड़ते। उनसे पूछो कि घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं है। कई बार आते थे सन्यासी, उनसे पूछते थे तो वो बताते नहीं थे, तो बाबा कहते थे ज्यादा नहीं पूछो, वो बताएंगे भी नहीं। फिर कभी से युक्ति से उनको ज्ञान दो तो धीरे धीरे वैराग्य क्यों आया वो अपनी कहानी सुनाते हैं। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति, वह भी ज्ञान से घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए कि घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है कि आपको वैराग्य कैसे आया। साकार बाबा के टाइम पर भी एक दो सन्यासी आए थे, बाबा ने उनको पूछा तो वो कहे बाबा हमें आप पुरानी बातें याद नहीं कराओ, तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, परंतु वैराग्य कैसे आया, तो वैराग्य में तो सारी पुरानी बात सुना देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको वैराग्य कैसे आया है हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान। छोटेपन में क्या करते थे क्या किया, बाबा कहते हैं तुमको सब पता है, लेकिन पता है हम क्या करते थे, तो उन लोगों को भी पता है छोटेपन में क्या किया। तो बाबा कहते हैं तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर भी सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्ट्रेस हैं जो पार्ट बजाते आए हैं, अभी सबके लिए कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम, वहाँ फिर सबका नया संबंध जुटेगा। शांति धाम जाएंगे, शांति धाम से वापिस सतयुग में आएंगे, फिर वहाँ पर सबका नया संबंध होगा। समझाने के पॉइंट्स भी बाबा बहुत अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यहाँ भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वॉइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने, अब फिर वॉइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला भी तो चाहिए। पवित्र थे फिर अपवित्र बने फिर पवित्र बनना है, तो बाबा कहते हैं परंतु पुरुषार्थ कराने वाला भी तो चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते हैं तुम वही हो। कौन वही हो, बाबा के वही, कल अब पहले वाले बच्चे हो, तो बाप कहते हैं तुम वही हो। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप भी वही हो। बाबा कहते तुम मेरे कलप पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे, और बच्चे क्या कहते हैं बाबा आप भी कलप पहले वाले हमसे दूर हो गए थे, हमारे बाबा हो। बाप कहते हैं कलप पहले भी मैंने तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कलप कलप ऐसे ही करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, बाबा को भूलते रहेंगे, बाबा आएगा फिर बाबा बताएंगे फिर बाबा हम सबको राज्य देंगे। तो बाबा कहते हैं कलप कलप ऐसे करते रहेंगे, ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़ा फिर भी पड़ेंगे। शुरू के यज्ञ की स्थापना में कितने विघ्न आए, बाबा बिल्कुल निश्चिंत था, बाबा ने कहा पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, इनको सब याद है। आशीर्वाद बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को सब याद है, क्या बताते मैं क्या करता था, गांवरे का छोड़ा था क्या करता, गांवरे का छोड़ा तो नहीं बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा क्या करते थे वो बाबा ने बताया। इनको तो सब याद है, बतलाते हैं गांवरे का छोड़ा था और अब वैकुंठ का मालिक बना, वैकुंठ में गांवरा कैसे होगा? वैकुंठ में गांव होगा? वहां तो गांव होगा ही नहीं। गांव भी ऐसा रॉयल होगा, इतना शहर होगा, गांव में छोटे छोटे शहर होंगे लेकिन वो इतने रॉयल होंगे तो गांव का तो नाम ही नहीं है। तो बाबा कहते वैकुंठ में गांवरा कैसे होगा, ये भी तो गांवरे का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना, ये भी गांवरे का छोरा था, अभी तुम जानते हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया क्या है बताओ। पुरानी दुनिया गांवरा, वो दुनिया हम पहले गांव थे, अब ये पुरानी दुनिया क्यों गांवरा है, इसलिए तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया गांवरा है। कहां वैकुंठ और कहां ये नरक, ये नरक कैसा है? सत्यों की भेंट में, वैकुंठ की भेंट में तो गांव जैसा है। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं कि यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। और आज क्या हो गया, मिट्टी पत्थर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, शीशा उठाएंगे, प्लास्टिक उठा लेंगे, उसके करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इनकी कोई वैल्यू ही नहीं, वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहती है विचार करो सचमुच में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे, वहां तो सब खानियां भरी रहती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। इन पंछियों को बाहर भेजो ताकि बाहर स्वतंत्र रूप से खेले, यहाँ उनको स्थान नहीं मिल रहा, कोई दरवाजा खोलो तो बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको स्थान नहीं मिल रहा है तो अंदर चिल्ला रहे हैं, इसलिए स्वतंत्र हो जाएंगे तो बाहर भेजो, हाथ से नहीं करो, ऐसे ही थोड़ा एक तरफ दरवाजा खोल दो, आप ही जाएंगे भाइयों की तरफ, ठीक है। इनको भी अच्छा लगता है ना, आप तो, ताकि कोई भी दूसरे विचारों की ओर ना खो जाए और कोई भी ऐसा ना हो जो बुद्धि इधर उधर जाए। ये आते ही है किस लिए, सजाग करने के लिए, कि सब के सब बाबा के बच्चे मुरली के टाइम पर भी सजाग होके बैठे, देखो ना कितने अच्छे हैं, बिल्कुल प्यार से आराम से आते हैं, सबको सजाग करके फिर चले भी जाते हैं। अच्छा बाबा कहते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहती हैं विचार करो सच्ची में तुम्हारे कितने सोने के महल कैसे थे, वहां तो सब खानियां भरी रहती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश हो, उदासी आए, कुछ ऐसा हो, कई समय मुरझाइश आती है, तो बाबा ने समझाया है ऐसे ऐसे रिकॉर्ड जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। गीता ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तो बाबा कहते और तो वैसे भी गीत में ये कोई छीन भी तो नहीं सकता है, तो बाबा कहते हैं कोई समय मुरझाइश आती है, तो बाबा ने समझाया है कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके, आधा कलप के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद के राजाई के वारिस हैं, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए, किस बात का, कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम बेहद के बाप के वारिस हैं, बाप स्वर्ग का वारिस बनाते हैं, तो उनको भी जरूर याद करना है, याद करने बगैर तो वारिस बन न सके, याद करें तो पवित्र बने तब ही वारिस बन सके। तीन बातें, याद करो याद से पवित्र बनेंगे तब ही वारिश बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल से ताज बनते हैं। जन्म बाय जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है वो भी दान पुण्य करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे क्या करते हो, अविनाशी ज्ञान धन दान करते हो। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों अनुसार फल तो मिलता है ना। कोई बड़ा राजे का, कोई बड़ा राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। राजा का बच्चा है तो क्या कहेंगे, इसको बड़ी लॉटरी मिली है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल चांस वाले सारे विश्व के मालिक बन ना सके। बाबा कहते हैं भलो राजा बन जाए लेकिन डबल अहिंसक और सिंगल ताज वाले पूरे विश्व के मालिक नहीं बनते। भारत भी जब द्वापर में अलग अलग स्टेट में बटा तो छोटे छोटे राजाएं, छोटे छोटे गांव के, कोई छोटे छोटे स्टेट के राजाएं होते थे। तो बाबा कहते सारे विश्व के तो मालिक बन नहीं सकते हैं, सिंगल ताज वाले सारे विश्व के तो मालिक बन न सके, डबल ताज वाले ही विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई की राजाई होती ही नहीं। दूसरे धर्म फिर बाद में आते हैं, वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग अलग कर देते। आपस में मतभेद हुआ और आपस में प्यार खत्म हुआ। दो भाई राजाएं हैं, आपस में प्यार खत्म हुआ तो राजा ही आपस में बट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर भिखारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े कर अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। कौन सी बात नहीं कहेंगे कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। बाबा कहते वहां पर ऐसे नहीं कहेंगे, वहां ऐसे नहीं कहेंगे ये अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा तो उसका रिटर्न भी ऐसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म करना ही है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते, ये उसके लिए शेमत भी लेनी है। कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि ये कुछ मैं कर रहा हूँ। कम से कम बाबा से या दादियों से पूछे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा है या नहीं करूँ। उनको ये भी पता नहीं रहता कि हमको बाबा से पूछना भी है, श्रीमत लेनी भी है। बाबा कहते हैं अच्छा कर्म करना ही है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। बाबा के टाइम पर क्या सेवा के प्लान बनाते थे तो बाबा बताते थे, कईयों को पता नहीं होता था जो बनाना है कैसे बनाना है। ऐसी युक्ति से बनाओ जो सेवा हो, ऐसा नहीं कि बनाओ कि उससे डिस सर्विस हो। इसलिए बाबा कहते थे कुछ भी प्लान बनाते हो तो पहले बाबा को लिखो। बाबा देखते थे, बाबा उसमें करेक्शन करते थे, एडिशन करते थे। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तुम्हें समझते होगे कितनी पोस्ट आती होगी। प्राइम मिनिस्टर हमेशा ढेर पोस्ट आती है और उनकी पोस्ट को कौन देखता है, उनके सेक्रेटरी देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट होती है वो रखते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले पढ़ते नहीं है, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वह सारी पोस्ट देखते हैं, जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है। बाबा के पास बहुत पत्र आते थे पहले तो, अभी तो आजकल ईमेल है वो है। तो बाबा के टाइम पर, दादियों के टाइम पर पहले भर भर के पत्र आते थे। तो सारे पत्र होते थे, फिर क्या होता था ईशुदारी उन सबको देखती थी, खोलती थी। कोई तो केवल याद प्यार समाचार के होते थे, कोई खुशी के होते थे, कोई कोई ऐसे भी पत्र होते थे राय के होते थे, तो वो सारे देखती थी। याद प्यार समाचार के है तो बाबा को नटशेल में सारा बता देती थी। तो बाबा कहते हैं जो बिल्कुल मुख्य अंगे पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे होता है, मुख्य मुख्य पत्रों को तो फॉरन रिस्पॉन्स दे सकते। जो बहुत पत्र होते थे ऐसे जिसमें बाबा उसी समय रिस्पॉन्स देते थे, जैसे दादी का पत्र आता था, बड़े भाइयों के पत्र आते थे, उनके बहुत जरूरी होते थे, विश्व किशोर भाऊ है, इन सब के पत्रों का बाबा फटाफट रिस्पॉन्स करते थे। मुख्य मुख्य पत्रों को था फौरन रिस्पॉन्स कर देते हैं। बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। बाबा के बाद ढेर पत्र आते थे, क्लास के सब भाई बहने लिख के देते नाम सहित। तो बाबा फिर क्या क्या लिखते थे, क्लास के सब भाई बहने जिन्होंने याद प्यार भेजा है उन सबको नाम सहित। बाकी एक ही का नाम 50 नाम लिखेंगे क्या? बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें तो ये तो हो ना सके। बाबा के पत्र देखे ना, एक एक को हाथ से लिखते थे, तो जिन्होंने बाबा के पत्र देखे वो हाथ खड़ा करें। हैं सिंधी लिपि, रेड पेंसिल और भाषा सिंध हिंदी, है ना। बाबा के इतने बड़े देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो हाथ खड़ा करें। बाबा के पत्र नहीं देखे हैं, अभी हिस्ट्री हॉल में रखे होंगे, लास्ट में एक शीशा वाला लगा हुआ है शोकेस, उसमें रखे होंगे, शायद बरसात के कारण निकाल ना दियो, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र कैसे लिखे ये तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। सबसे जास्ती गदगद होती है कौन, और बाबा का पत्र आए तो हमें याद आता है, जब बाबा का पत्र आता था तो करनाल में मनोहर दादी बाबा का पत्र लेकर के बैठती थी, सारी क्लास के भाई बहने इकट्ठे हो जाते थे, फिर पत्र सुनाते थे, बाबा रमणीक बातें भी लिखते थे और सब बैठ करके प्यार से सुनते थे। कईयों के लिए जो भी होगा कोई राय होगी वो भी एक ही पत्र में, उसी पत्र में याद प्यार, उसी में ही राय, उसी में सेवा समाचार, सारा एक में बाबा लिखते थे। तो बाबा कहती हैं सबसे जास्ती गदगद होती है बंदेलियों को, ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं। बड़ी खुश होती थी, बंधन है, बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा कैसे हमको याद करके पत्र लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वाले की पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुमन करेंगे। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, चुमन करेंगी, आंखों पर रखेंगी। कभी कभी अचानक ही बाबा कोई न कोई बंदेली को पत्र भेज देते थे तो सोच ही नहीं सकती थी कि बाबा का पत्र मेरे पास आएगा, बाबा ऐसे मेरे को लिखेंगे। वो तो प्रेम के आंसू पत्र लेकर के सीने से लगाकर ऐसे खो जाते थे, बाबा का प्यार भी उतना होता था। चुमन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बंदेलियों कोई कम है क्या, बाबा को बहुत रहता था, बंदेलियां कोई कम है क्या। कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है, कोई तो समझते हैं हमको पवित्र जरूर बनना है, भारत वॉइसलेस था ना, अब विश्वास है, अब जो वॉइसलेस बनेंगे वही पुरुषार्थ करेंगे, कल पहले मिशन। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना कि बच्चों को समझाए। फिर कौन सा प्लान है, बाबा को बताया होगा, गीता का युग चल रहा है, गीता का ही, गीता को ही पुरुषोत्तम संगम युग का गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, तो बाबा क्या बता रहे हैं, तुम्हारा भी ये प्लान है ना, गीता का ग्रुप युग चल रहा है, तुम्हारा भी ये प्लान है, गीता का युग चल रहा है, गीता को ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है, तुम लिखो तो ऐसे, गीता का ये पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती। बाबा ने पहले से बताया था, अभी बच्चों ने प्लान किया था, बाबा ऐसे लिखेंगे कि ये संगम युग जो है ये गीता का पुरुषोत्तम युग है, फिर बाबा ने ऐड कराया कि ये पुरुषोत्तम युग से ही पुरानी दुनिया नई होती है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो क्या बनेंगे, डबल सिरताज बनेंगे। कितना भारी स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई में राजा भी है, रानी भी है, तो प्रजा भी है। तो बाबा कहते हैं प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होंगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी, कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें अगर कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी। कोई कितना भी पुश करे, विघ्न डाले और मार्ग से हटाने की कोशिश करे, बाबा जी का बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। रोटी टुकड़ तो मिल सकता है, बाप कहते हैं पवित्र बनो, इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकता है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। माताएं थी तो विघ्न आते थे तो उनको लगता था फिर हमारी पालना कौन करेगा। बाबा कहते इसमें क्या है, हर एक की पालना तो होती है, रोटी टुकड़ा सब कुछ मिलता ही है। तो बाबा कहते इतने मजबूत भी तो बनना चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगा। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते, बाबा फिर ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते कि पूजा के टाइम क्या होता था। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, बाबा अपना कान पकड़ते थे। कभी कभी बाबा कहते क्यों बुद्धि, कभी ऐसे अपने मुंह पे थप्पड़ भी लगा देते थे। तो बाबा कहते हैं पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। लगाते क्यों है ये मन, तुम क्यों इधर गया। बाबा ने एक किताब लिखी हुई थी भक्ति मार्ग के, उसमें तो ज्ञान नहीं था, मन की ओर अपनी वो मंत्रिमंडल सारे की मीटिंग करते थे, फिर उनको बताते थे हे मन तुम क्या काम कर रहा, बुद्धि तुम क्या काम करे। फिर जब बाबा भक्ति करते बुद्धि इधर उधर जाती तो बाबा उसको कंट्रोल में करते, क्यों इधर गई बुद्धि, इधर क्यों गई। तो बाबा कहते हैं चमाट लगाते थे। अब तो ये है ज्ञान, इसमें मुख्य बात है याद की, याद ना रहे तो क्या करना चाहिए हैं? बाबा की तरह थोड़ी अपने को चमाट मारोगे। बाबा ने कहा अपने को चमाट मारो, मीन्स अपने को अटेंशन दिलाओ कि क्यों नहीं याद रहती, बुद्धि इधर जाती है तो अपने को अलर्ट करके बैठो, एक्टिव हो करके बैठो, बुद्धि को पावरफुल थॉट दो। तो बाबा कहती है याद ना रहे तो अपने को चमाट मारनी चाहिए। माया तुम मेरे ऊपर क्यों जीत पाती हो, बाबा जैसे भक्ति में कहते थे ना कि क्यों मन इधर उधर घूमता है, तो बाबा कहते माया को बोलो तुम क्यों मेरे ऊपर जीत पाती हो, माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती हो, क्या मैं इतना कच्चा हूँ। देखो कैसे बात करनी है अपने आप से, क्या मैं इतना कच्चा हूँ, मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है, अपने से पूछो कि मैं इतना महावीर हूँ कि मैं ऐसा महावीर जो मेरे को कोई हरा ना सके। अपने से पूछो कि मैं इतना महावीर हूँ, और उनको भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे ऊंच दर्जा पाएंगे, अपना राज्य भागे लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में भी क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे क्रोध नहीं करना है, सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाए और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे के नीचे ही रह जाए। ज्ञान में भी ऐसा है, समझाने वाले से सुनने वाले सीखने वाले वो कहाँ कहाँ ऊंच चले गए, और कोई कोई समझाने वाले कहाँ से कहाँ चले गए। ये भी कोई पुरुषा तो लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाए वह ऊंच बन जाए, हम नीचे के नीचे ही रह जाए, ये भी कोई पुरुषार्थ है क्या। फिर बाबा ने पंडित की कहानी सुनाई, पंडित की कहानी तो सबने सुनी हुई है ना। तो पंडित की कहानी, बाप को सबने तो सुनी हुई है कहानी, सब जानते, भक्ति मार्ग की भी है और बाबा भी उसका उदाहरण देते। वो दूसरों को कहता रहा लेकिन खुद पुरुषार्थ नहीं किया। तो बाबा कहते हैं बाप को पंडित कहानी, बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से खीर सागर में चले जाते हो, बाकी ये सब निशान बाप बैठ बतलाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्राह्मणी का भी मिसाल है, वो कौन सा, क्योंकि तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीते हो, वह तो ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। तो बाबा कहती है तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके हो, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है, जरूर यहाँ होगा, वहाँ थोड़ी होगा, वहाँ थोड़ी सूक्ष्म वतन में रहेगा, सूक्ष्म वतन में दिखाते। लेकिन बाबा कहते कर्म करने बच्चों की सेवा के लिए तो यही है, तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है, कौन सा प्लान है, मनुष्य को देवता बनाने का। ये चित्र भी है समझाने के लिए, इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का ये प्लान है, बाबा भी ऐसा है बताते हैं, जब चित्र बनाओ उसमें लिखो ये गीता के भगवान का प्लान है। हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी होती है, प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, वहाँ चित्र में केवल ब्रह्मा को दिखाया ना, तो बाबा कहते एक ब्राह्मण थोड़ी खड़ा रहेगा, ब्रह्मा मिश्र उनके साथ ब्राह्मण भी हैं, तो और भी ब्राह्मण होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मण की हुई ना, ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। और देखो भक्ति मार्ग में फिर क्या किया, सब ब्राह्मण जो होते थे वो चोटी रखते थे, आजकल के ब्राह्मण ना भी रखते हो लेकिन उस समय सब ब्राह्मण रखते थे भक्ति मार्ग के। तो बाबा कहते देखो ब्रह्मा के साथ तुम ब्राह्मण भी साथ में हो, तो वो यादगार बनाई हुई है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप, इस समय बहुत बड़ा भारी कुटुंब परिवार होगा ना, जो फिर तुम देवी कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है, तुम्हारा नाम बहुत है। क्या नाम है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो। बाबा क्या बता रहे हैं, तुम्हारा नाम है वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो। वह तो सब है झूठ, बहुत होने के कारण मूझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन होने में मेहनत लगती है। बाप कहती हैं, ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है, मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है कौन, अब बताओ, सबसे बड़ा और सबसे जास्ती चुंबक है शिवा, और चुंबक के पास कौन जाता है, जो जितना पवित्र और जितना बाबा को प्यार से याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है, सबसे जासी चुंबक है शिव बाबा, वही वही ऊंचते ऊंच रहते, चुंबक भी वही है, ऊंचा भी वही है, ऊंचे स्थान पर भी वही रहते, ऊंच भी वही बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य स्थान, पहला है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम 84 जन्मों के लिए बेहद के बाबा के वारिस बने हैं। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बाबा, फिर से बताती हूँ, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान, स्थूल देश और शरीर के स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव, स्थूल देश व शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव, जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी भी जिस अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी ऐसे बहुरूपी बन जाओ जो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है, दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र, दूसरों के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। अव्यक्तिशाली स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपने मनसा स्मृत स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितने अपने मन को स्मृत संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने की समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे।